समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। जी हाँ, निराशा को दूर भगाते हुए और आशा को गले लगाते हुए स्वागत कीजिए नए सवेरे का। नमस्कार, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की लिखी इन पंक्तियों के साथ आपका अभिनंदन। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
हेलो प्रियंका, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, वेल टू ऑल आवर लिसनर्स, अ वेरी वार्म वेलकम। वेल, सच ब्यूटीफुल लाइंस दैट प्रियंका शेयर्ड विद अस। इवन आई हैव समथिंग टू टेल यू लिसनर्स। वेल, द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन यू कैन एवर गेट, it is to know that you are an inspiration to others. So start living an inspirational life today.
बिल्कुल जी हाँ, नर हो ना निराश करो मन को, तो आप अपने आप में प्रेरणा स्रोत हैं, तो उस प्रेरणा को जगाने की जरूरत है।
Rightly said प्रियंका, and this is our daily news magazine program आज सवेरे। listeners, well first we'll give you the national and international news, then we'll provide you metro city updates, and also we'll be exploring today's history. Today it's 20th of September. First we'll begin with the headlines.
बिल्कुल, और सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे और लगभग 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। अगर इनमें परियोजनाओं की बात करें तो इसमें समुद्र तटीय प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क संपर्क और चिकित्सा क्षेत्र को लाभ मिलने वाली परियोजनाएं हैं। और आज ही इंदिरा डॉक से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन होगा।
वेल, मूव ऑन। वेल, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म चलो जीते हैं इज बीइंग स्क्रीन्ड नेशनवाइड अक्रॉस लैक्स ऑफ स्कूल्स एंड नियरली 500 सिनेमा हॉल्स टू मार्क द 75th बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वेल, इट इज इंस्पायर्ड बाय अ चाइल्डहुड इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। द फिल्म टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय नारू, हु इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वामी विवेकानंद फिलोसफी एंड स्ट्राइव्स टू मेक अ डिफरेंस इन हिज स्मॉल वर्ल्ड। वेल, वी हैव मोर डिटेल्स ऑन दिस फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
चलो जीते हैं वॉज डायरेक्टेड बाय मंगेश हडावले एंड प्रेजेंटेड बाय आनंद एल राय एंड महावीर जैन। दिस शॉर्ट फिल्म वॉज रिलीज्ड इन 2018 एंड वॉज अमंग्स द मोस्ट व्यूड शॉर्ट फिल्म्स ऑफ दैट ईयर। द फिल्म ऑल्सो वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट नॉन फीचर फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज इन 2019। टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, वैष्णवी हु अटेंडेड द स्क्रीनिंग ऑफ चलो जीते हैं इन न्यू दिल्ली सेड द मूवी टेल्स अबाउट द थिंग्स दैट हैपन अक्रॉस द कंट्री बट आर नॉट नोन टू द पीपल।
मेरा नाम वैष्णवी है। ये मूवी बहुत ही अच्छी थी। ऐसी चीजें जो देश के कई कोने में चल रही है मगर लोगों को पता नहीं है, इस चीज के बारे में आज कई लोगों को पता चला।
अनुजा, अनदर व्यूअर, एक्सप्रेस्ड हर हैप्पीनेस आफ्टर वॉचिंग द शॉर्ट फिल्म। शी प्रेज़्ड द फिल्म बाय कॉलिंग इट हाईली मोटिवेशनल।
मैं अनुजा किशनगढ़ से आई हूँ। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी और इसे बहुत मोटिवेशन हुआ।
द इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैज डिस्क्राइब्ड द फिल्म एज अ सिनेमेटिक होमेज टू स्वामी विवेकानंद philosophy and ideals. The special re-release of the film begin on 17th of this month and will run until 2nd of October. With Samarth, Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
और शगुन, प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर उन्हें उपहार में दी गई 1,000 से ज्यादा वस्तुओं की नीलामी भी शुरू हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि देश के दक्षिणी राज्यों ने प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी 2025 में 100 से ज्यादा अनूठी वस्तुएं दान की है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी के 7वें संस्करण में दक्षिण भारत का एक जीवंत संग्रह शामिल है जिसमें केरल से 15, कर्नाटक से 22, तमिलनाडु से 29 आंध्र प्रदेश से 27 और तेलंगाना से 7 वस्तुएं शामिल हैं। इनमें भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की एक उत्कृष्ट तंजौर पेंटिंग भी शामिल है। ये नीलामी 2 अक्टूबर तक pmmementos.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। ई नीलामी में देश भर से 1300 से ज्यादा अनूठी वस्तुएं प्रदर्शित की जा रही हैं और नीलामी से प्राप्त सभी आय नमामि गंगे परियोजना में योगदान दी जाएगी।
Well, GST reforms quite popular nowadays, and this landmark move towards simplifying the tax structure and easing the financial burden on citizens. Well, Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day address this year, announced the next generation GST reforms. Well, the new tax rates will be implemented from Monday. Today, we will take a look at the potential impact of these reforms on the electronics appliances sector.
The tax rate on items like air conditioners and dishwashers has been brought down from 28% to 18%. The significant step will not just support localization efforts, but will also reduce import dependence. Similarly, cut down of tax on television and non-TV monitors has been slashed to 18%. The move will directly boost demand for these appliances, helping domestic producers expand the market size. Talking to Akashvani News, a resident of Delhi, Shubhan and Mishra welcomed the new reforms. He said that this move will make household products more affordable and cheaper. This move will further expand opportunities for MSMEs in plastics, wiring, cooling systems, LED panels and assembly services. The new reforms will come into effect from Monday onwards. With Rohan and Nitika, Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
बिल्कुल, जीएसटी में हाल में बड़े सुधार किए गए शगुन, ताकि आम लोगों को राहत पहुंचे। और आपको बता दें श्रोताओं कि आकाशवाणी आज से शाम 6:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम मार्केट मंत्र में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर चर्चा करेगा। ये सुधार इस सोमवार से लागू हो रहे हैं और चर्चा में वित्त मंत्रालय के अधिकारी और एक आर्थिक विश्लेषक भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता 0112342105 और 2331444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, जिस पर आप कॉल करके सवाल अपने रख सकते हैं। नंबर है 9289094044।
Now, listeners, let me share Northern Railway train update. Well, the Northern Railways announced that several trains were cancelled due to continuous rains and waterlogging in the Jammu division, and they will resume services from tomorrow onwards. Our correspondent reports that the decision for repeating the trains follows safety inspections and a phased restoration plan. Well, the Northern Railways have informed that Jammu Tawi Varanasi, Jammu Tawi Howrah and Jammu Tawi Patna will restart operations tomorrow, while Sri Mata Vaishno Devi Katra to Dr. Ambedkar Nagar will resume from Monday. So the passengers, they are urged to check schedules on the Northern Railway website or helpline numbers before travelling. Another update, the Jammu and Kashmir State Board of School Education has issued revised dates for the postponed exams of class 10th and also of class 11th. Well, our correspondent reports, as per the notification, the secondary school examination, this is for class 10th, and higher secondary examination part first, class 11th, session annual private biannual 2025, they were earlier scheduled on 10th of September 2025 in the data sheets, notified by the Jammu and Kashmir State Board of School Education as 4th of September. They were then postponed due to unavoidable circumstances, and now they have been rescheduled on 25th of September. September 2025, this is for class 11th, and on 26th of September for class 10th. So, however, the timing and venue of the examinations, which was notified earlier, it will remain unchanged. So, the revised date schedule, is available on the Jammu and Kashmir State Board of School Education website, which is jkbose.nic.in.
और अब आगे चलते हैं बात खेलों की। और खेलों में इस समय एशिया कप क्रिकेट सबके कह सकते हैं ना कि छाया हुआ है सबके जहन में। और एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में कल ओमान को 21 रन से हरा दिया। अबू धाबी में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम 4 विकेट पर 167 रन ही बना पाई। और एशिया कप के सुपर फोर चरण की शुरुआत आज दुबई में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबले से हो रही है। और कल सबकी निगाहें रहेंगी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में। और भारत पूल मैच में पहले पाकिस्तान को हरा ही चुका है, एक तरफा मैच ही कह सकते हैं, जिसमें बहुत आसानी से जीत हासिल की। अब देखते हैं कल क्या रोमांच रहे।
ऑल आईज ऑन टुमारोज मैच नाउ।
और अब महानगरों की खबरों की ओर चलते हैं।
Yes, so I will begin with Chennai, Priyanka. According to a global FAO study, women make up nearly half of India's small-scale fisheries workforce, with 4.8 million women engaged across the sector. Well, they contribute 27% in pre-harvest, 18% in harvesting, and 55% in post-harvest processing and trade. The findings, part of the Illuminating Hidden Harvests report, they were discussed at a regional meeting of Bay of Bengal Rim Countries in Chennai. The study highlights that women, they play a crucial role in ensuring food security and sustaining local economies, with India's small-scale fisheries generating a whopping $2.3 billion annually from कैट सेल्स। वेल नाउ ओवर टू प्रियंका फॉर अपडेट्स फ्रॉम दिल्ली।
जी हाँ, दिल्ली की बात करें शगुन, इस बार हमने बारिश में देखा कि दिल्ली में जगह जगह पानी भरने की समस्या बहुत दर्दनाक रही कह सकते हैं। तो दिल्ली सरकार ने शहर में जल भराव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक नया जल निकासी मास्टर प्लान तैयार किया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल नई दिल्ली में इस योजना का अनावरण किया। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक नई अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप ISBT से चलने वाली ये सेवा दिल्ली उत्तर प्रदेश कॉरिडोर की बस कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और रोजाना 6 AC बसें दोनों ओर से चलेंगी, जिनका किराया 32 से 125 तक निर्धारित किया गया है। तो लाजमी है इससे यात्रियों को बहुत राहत मिलने वाली है। और एक और खबर आपको बता दें हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने कुल 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI को 1 पद पर जीत मिली है। छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए ABVP के आर्यन मान और उपाध्यक्ष पद के लिए NSUI के राहुल झांसला विजेता रहे और सचिव पद के लिए ABVP के कुणाल चौधरी विजेता बने, जबकि संयुक्त सचिव पद के लिए ABVP की दीपिका झा ने जीत हासिल की।
Yes, now Priyanka, let's head to Bengaluru. Karnataka Minister for Medical Education and Skills Development, Dr. Sharan Prakash Patil, announced that the Bengaluru Skills Summit will be held from November 4 to 6 to promote innovation and skill development. Chief Minister Siddaramaiah will inaugurate the event. And this summit, listeners, it will focus on enhancing skills among girls, also rural communities and persons with disabilities, aiming to provide world-class training for better employment opportunities. I have another update from Bengaluru. The Chief Electoral Office in Karnataka held a training session in Bengaluru for electoral registration officers and assistant chief electoral officers to prepare for the special intensive revision SIR of electoral rolls in 28 city assembly segments. Chief Electoral Officer V. Anbukumar urged officials to follow election commission guidelines. Special Commissioner Preeti Gehlot and other senior officers, they also attended this event.
और अब मुंबई की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने माझी लड़की बहन योजना के सभी लाभार्थियों से अपने KYC प्रक्रिया को पूरी करने की अपील की है, ताकि जो किस्त है उन तक आसानी से, सुविधाजनक तरीके से और पारदर्शी ढंग से पहुंच सके। लाभार्थियों को अगले 2 महीनों के भीतर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से KYC पूरा करने को कहा गया है। और एक खबर जो ध्यान खींचती है कि मुंबई शहर की जिला कलेक्टर आंचल गोयल ने कल शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान के अंतर्गत एक मोबाइल सेतु केंद्र का उद्घाटन किया। इस पहल से नागरिकों को वार्ड स्तरीय शिविरों, महा ऑनलाइन पोर्टल, सेतु सेवा केंद्र और आपले सेवा केंद्रों के माध्यम से आवश्यक प्रमाण पत्रों और आधार संबंधी सेवाओं तक तत्काल पहुंच होगी।
Focusing now on Hyderabad, the Telangana government has launched two new schemes to empower minorities through financial aid and self-employment. Minority Welfare Minister A. Lakshman Kumar introduced the Indirama Minority Mahila Yojana, and the other one, it is Revant Anka Sahara in Hyderabad, and 30 crore rupees has been allocated for these initiatives.
और कोलकाता का रुख करते हैं तो मौसम विभाग ने 22 और 23 सितंबर के दौरान दक्षिण बंगाल के जिलों में बारिश बढ़ने का अनुमान लगाया है। 26 सितंबर से 29 सितंबर तक तटीय जिलों सहित दक्षिण बंगाल के जिलों में छिटपुट वर्षा हो सकती है। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को भी बारिश में वृद्धि होगी और दुर्गा पूजा अब शुरू होने वाली है। ऐसे में शायद कुछ कठिनाई हो लोगों को, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान उत्तर बंगाल के जिलों में बारिश का कोई अनुमान नहीं है। और अब मौसम का हाल जान लेते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में वैसे कुछ दिनों से तो बहुत चिलचिलाती धूप है, वो चल रही है। और मुंबई में मुंबई में बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा कोलकाता की बात करें तो वहां भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
Pinka, now let's. I will talk about Chennai. It is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or even thunderstorm. The minimum temperature was 25 degrees Celsius. Maximum, listeners, it will be around 32 degrees. Bengaluru, it is also expected to have a generally cloudy sky with moderate rain there as well. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad, if I talk about Hyderabad, it is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers are also expected. The temperature will hover between minimum of 25 degrees and maximum of 33 degrees Celsius here.
जी शगुन, और अब हम इतिहास के पन्ने पलटे, उससे पहले हम श्रोताओं को बताएं कि कल हमने एक प्रसिद्ध गायक को खो दिया। असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का कल सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें सिंगापुर पुलिस ने स्थानीय अस्पताल पहुंचाया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जुबीन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने के लिए सिंगापुर में थे। और अगर उनके फिल्मी सफर की बात करें तो 2006 की फिल्म गैंगस्टर के गाने या अली से बॉलीवुड में सुर्खियों में आए थे। 40 अलग ये, और उनका जो पहला एल्बम अनामिका 1992 में आया था, तो बहुत संवेदनाएं व्यक्त की हैं सभी ओर से। जी हाँ, और उनकी आवाज कह सकते हैं हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। जुबीन ने न केवल एक गायक, गीतकार और अभिनेता के रूप में बल्कि पूर्वोत्तर में एक सांस्कृतिक दूत के रूप में भी प्रतिष्ठित हो रहे थे।
Such a beautiful voice.
और अब आगे बढ़ते हैं, अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए इतिहास के पन्ने टटोलते हैं।
And we'll take our listeners way back in time. Well, in the year 1857, British troops captured Delhi, a significant event during the Indian Rebellion of 1857. Also in the year 1878, Hindu, an English weekly in Madras with G.S. Iyer as its editor, was first published with only 80 copies. Also in the year 1904 now, Wilbur Wright completed the first circular flight in the Wright Flyer 2. In 1946 now, the first ever Cannes Film Festival commenced in France, showcasing films from 21 countries.
और आज दुनिया भर में बसें परिवहन का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। तरह तरह की आरामदायक सुविधा संपन्न बसें दुनिया के विभिन्न शहरों में दिखाई देती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल से चलने वाली बसें पहले भाप से चला करती थी। दरअसल 1831 में 20 सितंबर ही वो तारीख थी, ब्रिटेन के गोर्डन ब्राउन ने आज ही के दिन भाव से चलने वाली पहली बस बनाई थी.
Well, interesting to note that. And in the year 1993, first developmental launch of PSLV, an Indian Remote Sensing Satellite, IRS-1E, carried remote sensing payloads, but it could not be placed in the orbit. In the year 1997, President K.R. Narayanan inaugurated the first Dr. Ambedkar Law University in Chennai.
जी हाँ, आपने उपग्रह की बात की तो एक हमारा और उपग्रह जो बहुत सक्सेसफुल रहा है शिक्षा क्षेत्र के लिए समर्पित हमारे देश का पहला उपग्रह था एडुसेट, जिसे 20 सितंबर 2004 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रक्षेपित किया था. GSAT-3, जिसे एडुसेट का नाम भी दिया गया, इसका कोविड लॉकडाउन के दौरान इस्तेमाल कई राज्यों में सरकारी स्कूलों तथा शिक्षा सामग्री पहुंचाने के लिए भी हुआ था.
How wonderful. And now in the year 2019, the world's largest ever protest on climate change was organized by students from 185 countries and also culminating in Manhattan City rally. It was led by Greta Thunberg and it underscored the urgency of addressing environmental challenges on global scale.
और अब जानी मानी हस्तियों को याद करते हैं. आज पुण्यतिथि है महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कनकलता बरुआ की. भारत छोड़ो आंदोलन की युवा शहीद कनकलता बरुआ बहादुरी और दृढ़ निश्चय की प्रतिमूर्ति बनकर उभरी. कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के बरंगाबड़ी गांव में हुआ था और मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने 20 सितंबर 1942 को असम के घोपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के साहसिक प्रयास में स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह मृत्यु वाहिनी का नेतृत्व संभाला. जुलूस का नेतृत्व करने का उनका अदम्य संकल्प उल्लेखनीय था और उनके वीरतापूर्ण कार्यों ने अमिट छाप छोड़ी. पुलिस के साथ टकराव के दौरान राष्ट्रीय ध्वज पकड़े हुए ही उन्हें गोली मार दी गई. उनका बलिदान प्रेरणा का स्रोत बन गया, विशेषकर ऐसे समय में जब स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी जोर पकड़ रही थी. और उनके असाधारण साहस को श्रद्धांजलि के रूप में वर्ष 2020 में एक तटरक्षक पोत का नाम उनके नाम ICGS कनकलता बरुआ पर रखा गया. और पता है उनके फिल्म पर निर्देशक चंद्रा मुदोई ने एक फिल्म भी बनाई थी असमिया भाषा में और उसके बाद हिंदी में भी उसका रूपांतरण हुआ था पूरब की आवाज से. तो असमिया फिल्म जो उन पर बनाई गई उसका ये गीत सुनते हैं.
माते है जोदी आई रोनो लोई जबी ले माते जोदी है भुजले न जबी
ओ ते जग पानी कोरियानी स्वराज बोगा साहबो कोरी में इबाज
नहोले
Well, listeners, we salute the brave heart. Today, listeners, we are also remembering folk and rock singer-songwriter Jim Croce. Well, James Joseph Croce, he released 5 studio albums and numerous singles are to his name. He also formed a partnership with another singer-songwriters and the follow-up album, Life and Times. It included the song, this is pretty famous, Bad Bad Leroy Brown. And this was his number one single, but I have chosen another single from him. This is a time in a bottle.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day.
और आज ही की तारीख यानी 1 अक्टूबर को जन्मी कह सकते हैं एनी बेसेंट, मूलतः 20 सितंबर को कह सकते हैं उनकी डेथ हुई थी और वो जन्मी थी 1 अक्टूबर को, मूलतः ब्रिटिश थी. उनकी पैदाइश भले ही ब्रिटेन में हो लेकिन दिल से वो पूरी तरह भारतीय थी. भारत में आज़ादी के संघर्ष के दौरान उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा और प्रख्यात समाजसेवी लेखिका एनी बेसेंट का भारत की मिट्टी से गहरा लगाव रहा. बेसेंट 16 नवंबर 1893 को तत्कालीन मद्रास के अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आईं और 1895 जनवरी महीने में वाराणसी आईं. यहां उन्हें लगा जैसे अपने घर आ गई हैं. वाराणसी में संस्कृत सीखी, गीता का अनुवाद किया और उन्होंने साल 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। बेसेंट साल 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी।
Also, she became a prominent speaker for the National Secular Society as well as a writer. And also, she became thereafter, she was involved with union actions as well. We were talking about Annie Besant. Listeners, today we are also remembering Stephen Goodman. Well, another folk and country singer-songwriter that I also found out about. And he has recorded numerous singles and received the Grammy Songwriter Award for Best Country Song. I have chosen a beautiful song by him. So let's listen in.
Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. There's 15 cars and 15 restless riders, three conductors and 25 sacks of mail. They're out on a southbound odyssey and the train pulls out of Kankakee.
और अब बात प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता ए नागेश्वर राव की, जिनका पूरा नाम था अक्की कनेनी नागेश्वर राव और आज उनकी जयंती है। उन्हें कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म विभूषण और भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1941 में मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू कर दिया था। एक तेलुगु फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम किया, मुगव मनसुलु 1963 में आई थी। पुनर्जन्म पर उस समय पहली बार कोई फिल्म बनी थी और हिंदी में 1967 में आई फिल्म मिलन इसी का रीमेक थी। आइए सुनते हैं नागेश्वर राव पर फिल्माए ये गीत, और आप ये गीत ध्यान से सुनिएगा। जैसे फिल्म मिलन में गीत सावन का महीना पवन करे शोर में सुनील दत्त नूतन को कहते हैं शोर नहीं शोर, वैसे ही झलक इस तेलुगु गीत में भी है।
నా పాట నీ నోట పలకాల సిలక నీ బుగ్గలు సిగ్గులలకాల సిలక
నా పాట నీ నోట పలకాల సిలక
పలకాల సిలక
పలకాల సిలక
యహ ఠీక్ హదా
సి సి సిలక
పలకాల సిలక
నీ బుగ్గలు
Well, in one of the interviews, he admitted that he had his mother's influence on him, and he then said that, I'm quoting, "My mother has been my biggest inspiration in life. She encouraged me to pursue theatre at a very young age." How wonderful is that? And how wonderful was the song that we played for you, listeners? Today, we are also remembering Pablo Martin Sarasat. Well, He is called as Pablo the Sarasat because he is a composer and conductor of the Romantic period. And I have chosen a very beautiful instrumental piece, and you'll definitely find it interesting, listeners. Listen in.
और आज हम याद कर रहे हैं 50 और 60 के दशक की एक ऐसी प्रसिद्ध अभिनेत्री को जिन्हें लोग गोल्डन स्माइल वाली कहते थे। जी हाँ, बात कर रहे हैं शकीला की, जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। उन्होंने गुरुदत्त, शम्मी कपूर से लेकर देवानंद के साथ काम किया और शकीला को लोकप्रियता मिली फिल्म आर पार से, और इस फिल्म में उन्होंने सुपरहिट गाने को अमर कर दिया।
बाबूजी धीरे चलना,
Listeners, today we are also remembering a lyricist, a songwriter, Jules Stein. Well, he displayed musical talent from a very early age and studied the piano. The song which I have chosen, it's very popular. It's not snowing, but it's the song's name. It is Let It Snow. Listen in.
Outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go.
और अब हम याद करते हैं जाते जाते मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक महेश भट्ट को जिनका आज जन्मदिन है। महेश भट्ट ने अपने करियर में कई फिल्में दी जो लीक से हटकर थी लेकिन उसमें समाज पर अलग छाप छोड़ी, जैसे अर्थ, सारांश, नाम, सड़क, यूं तो अनगिनत फिल्में हैं उनकी, लेकिन अर्थ फिल्म का ये गीत जगजीत सिंह की आवाज में आज भी आपकी रूह को छू देता है।
झुकी झुकी सी नजर बेकरार है के नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है के नहीं, झुकी झुकी सी नजर।
उतना जब आप इतनी रूहानी आवाज सुनते हैं ना तो दिन जो जैसे बीता जाएगा ना यही आवाज आपके जहन में गूंजती रहती है।
राइटली सर प्रियंका,
और अब समय कह रहा है आपसे विदा ली जाए। प्रियंका अरोड़ा और शगुन चोपड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की।
नमस्कार, नमस्कार।